हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। क्योंकि ये बात वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, भला सिद्धार्थ को एक गवार लड़की जिसे बोलने तक की तमीज नहीं है, यहाँ तक कि वो दिखने में बड़ी ही भद्दी और बदसूरत है, उसे उस लड़की से प्यार कैसे हो सकता था। तो इसीलिए सिद्धार्थ अभी ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिलहाल आकांक्षा को सिद्धार्थ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने उसकी बातों को सुनकर झूठी मुस्कान लाकर अपना सर हिलाया और एकदम से बोली, अच्छा ठीक है सिद्धार्थ, मैं अब दादी से मिलने जा रही हूँ। और जल्दी ही वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी और धीरे से सिद्धार्थ के ठीक बराबर में से होती हुई आगे बढ़ रही थी। और जैसे ही वो इस वक्त सिद्धार्थ के करीब से गुजरी, उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ की आंखें काफी धुंधली सी हैं, जो उसे घूर रही हैं और कहीं भी किसी विचार में खोई हुई थीं। इसका मतलब साफ था कि जरूर सिद्धार्थ इस वक्त एक गहरी सोच में खोया हुआ था और जरूर वो झलक को बारे में सोच रहा था। वेल, आकांक्षा का दिल गुस्से से बेकाबू होकर धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उसकी आंखें इस वक्त आकांक्षा को आंखें सिद्धार्थ को देखकर उसे ये जानना चाहती हैं कि क्या वो जो कुछ सोच रही हैं सही है या गलत है। फिलहाल जल्दी ही आकांक्षा वहां से जाने लगी। वेल, वहीं सिद्धार्थ ने तुरंत अपना फोन निकालकर अपने असिस्टेंट रोनित को कॉल लगा दिया था, पता लगाओ कि आखिरकार झलक कहाँ गई है, ये कहकर उसने जल्दी ही फोन काट दिया। वहीं आकांक्षा सिद्धार्थ को फोन पर बात करते हुए सुन चुकी थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो बदसूरत सी लड़की झलक से हार गई है, जबकि आकांक्षा ने अपनी पहचान सब कुछ अपने बलबूते पर बनाया था। यही उसकी और उसके पिता मिस्टर ईशान ओबेरॉय आकांक्षा की वजह से उन्हें इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली कि वे जाने माने रईसों में से एक हो गए थे। फिलहाल आकांक्षा को अपनी हार का एहसास हो रहा था कि एक बदसूरत सी लड़की झलक से वो हार गई थी। फिलहाल उसने अपना मन मजबूत किया और जल्दी ही उर्वशी खुराना दादी के पास जा पहुंची और एक तेल निकालकर उनके पैरों की मालिश करते हुए बोली, दादी आपको पता है मैंने ये न्यू मालिश तकनीक सीखी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको जरूर रिलैक्स मिलेगा। ये बोलकर वो जल्दी ही दादी के पैरों में मालिश करने लगी थी। कहीं ना कहीं वो अब दादी को अपने फेवर में करना चाहती थी, उनका दिल जीतना चाहती थी, इसीलिए उसने उनके पैरों की मालिश भी कर दी। फिलहाल दादी हल्का सा मुस्कुराते हुए मन में सोचने लगी, अच्छा तुम तो काफी अच्छी लड़की हो, हालांकि मुझे झलक ज्यादा पसंद थी, लेकिन आकांक्षा के साथ अब कुछ समय बिताने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कि ये लड़की भी बुरी नहीं थी। वो काफी खूबसूरत, इंटेलिजेंट और धैर्यवान लड़की थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं करते। वेल, तभी दादी आकांक्षा की ओर देखकर होले से बोली, देखो तुम मेरे पोते की मंगेतर हो तो बेशक मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब जल्दी ही वो दोनों इधर उधर बातें करने लगे। इस बीच सिद्धार्थ अस्पताल के कमरे के बाहर छोटे से लिविंग रूम में बैठा रहा और तभी अचानक उसका फोन रिंग होने लगा। उसने देखा कि इस वक्त वही रोनित का फोन था। जैसे ही सिद्धार्थ के फोन रिंग होने की आवाज़ सुनाई दी, आकांक्षा जो पहले ही दादी से बात कर रही थी, लेकिन वो बड़े ही गौर से बाहर की बातें सुनने लगी। उसने बड़ी ही धीरे से आवाज़ में सिद्धार्थ को ये कहते हुए सुना, तुम झलक को ट्रेस नहीं कर सके हैं। तब कहीं ना कहीं ये सुनकर आकांक्षा को मन ही मन में शांति हुई। उसे लगने लगा कि उसके पिता काफी ज्यादा शातिर आदमी थे। उसे कहीं ना कहीं इस बात का यकीन था कि सिद्धार्थ झलक को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा, इसीलिए उन्होंने सारे सबूत खत्म कर दिए थे और झलक का पता लगाने के लिए उन्होंने पहले ही खुराना अस्पताल के निगरानी के आसपास जो भी कैमरे लगे हुए थे उनका रिकॉर्ड हटा लिया था। इसीलिए अब झलक के किडनैपिंग का कोई भी निशान और सुराग अब वहां मौजूद नहीं था। फिलहाल कहीं ना कहीं दादी आकांक्षा की ओर बेचैनी से देखकर सोच रही थी, भले ही ये लड़की मुझे पसंद हो और अच्छी भी दिखती हो, लेकिन ना जाने क्यों इसे देखकर ऐसा लगता है मानो कि इसका कोई और दूसरा चेहरा है। फिलहाल दादी मन ही मन में ये सारी बातें सोच रही थी। वहीं अचानक दादी को इस तरह से अपने ऊपर नजरों की तपिश भांपते हुए देखकर आकांक्षा मन ही मन में झुंझलाकर सोचने लगी, अब बूढ़ी औरत को क्या हुआ, ये मुझे इस तरह से क्यों घूर रही है, कहीं इसे मुझ पर कुछ शक तो नहीं हो गया। फिलहाल जल्दी ही आकांक्षा अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लाकर बोली, क्या बात है दादी आप कुछ सोच रही हैं, क्या बात है दादी आप कुछ सोच रही हैं। तब दादी हल्का सा मुस्कुराई और वो बोली, नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। वो एक्चुअली इतने दिनों से, तुम तो जानती हो, खुराना परिवार की पुरानी हवेली में मैं अकेली रह रही हूँ, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे साथ फ्यूचर में मैं काफी ज्यादा अच्छा समय बिताऊंगी। फिलहाल वो दोनों एक दूसरे की बातें सुनकर मुस्कुराई। वेल, तभी दादी अपनी बात करेक्ट करते हुए बोली, मुझे तो झलक के साथ रहना पसंद है, तो मैं क्या करूं? बेटा, मैं चाहती हूं तुम ज्यादा से ज्यादा अपने होने वाले पति के साथ समय बिताओ, मूवी देखो, साथ में घूमो फिरो, मौज करो, ठीक है? वहीं आकांक्षा को ये बात सुनकर उसे ऐसा लगा मानो कि किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो, क्योंकि आकांक्षा तो शुरू से ही सिद्धार्थ के साथ कुछ टाइम बिताना चाहती थी, उसके साथ मूवी देखना चाहती थी, कुछ रोमांस करना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ तो उसे हमेशा ही दरकिनार कर दिया करता था, तो वो निराश हो जाती थी। फिलहाल वो अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट सजाए दादी की बातों में हाँ मिलाने लगी। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा के विपरीत झलक चौकीदार के पास पहुंच चुकी थी। भले ही वो अब एम्बुलेंस में थी, लेकिन खतरे का उसे पता था कि वो चारों तरफ खतरे में घिरी हुई है, लेकिन झलक बिल्कुल शांत बैठी रही। उसने किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं काटा था। एम्बुलेंस में बड़ी शांति से उसने एम्बुलेंस के अंदर चुपके से इधर उधर कुछ ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी काम का नहीं मिला। जब एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ तो चार बड़े बड़े हैवी बिल्ट मस्कुलर बॉडी टाइप आदमी उसके साथ अंदर आए और एक ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। फिलहाल झलक को अब थोड़ा सा डर भी लगने लगा था, लेकिन फिर भी वो खुद पर काबू किए बैठी रही। तभी अचानक उसकी नज़र एम्बुलेंस के अंदर एक ट्रे पर रखी दो सिरिंजों पर पड़ी, तो वो समझ चुकी थी कि ये सिरिंज जरूर उसी के लिए बनाई गई होंगी। जरूर इसके अंदर या तो कोई जहर होगा या फिर कोई नशे की दवा होगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर की जगह छोटी थी और उसके पीछे बड़े लोग थे। इसीलिए झलक ने मौके का फायदा उठाया। उसने लड़खड़ाने का नाटक किया, तेजी से सिरिंज उठा ली और उसे अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। फिर पीछे खड़े लोगों की ओर मुड़ी और एक को जोरदार लात मार दी। झलक ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती थी, वो शुरू से ही बहादुर थी। अपनी पूरी ताकत से झलक ने लात मारकर उस आदमी को सीधे जमीन पर गिरा दिया, जिससे बाकी के लोग भी गिर पड़े, क्योंकि वे सीटों पर बैठे हुए थे। और उसने जल्दी ही एम्बुलेंस के अंदर जो स्ट्रेचर था उसे हटा दिया। फिर भी वो जगह छोटी थी। अब क्योंकि एक आदमी नीचे गिर गया तो बाकी लोग भी उसके ऊपर गिर गए, तो उन्हें उठने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगी। इस पर झलक ने मौका पाकर आगे बढ़कर अपने हाथों में एक सिरिंज पकड़ ली और उसने सिरिंज को सीधे दोनों आदमियों के शरीर में चुभो दिया और जितना जल्दी हो सके दबाया। अब तो उन दोनों इंजेक्शन उन आदमियों को देते ही उन लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। अपनी पूरी ताकत से झलक ने लात मारी और बाकी जो सिरिंज थी झलक ने जल्दी से उनको इंजेक्शन में डाल दिया था। अब दोनों आदमियों के शरीर पर एक एक इंजेक्शन लगी, छाती पर एक, पैरों पर। झलक को नहीं पता था कि उन इंजेक्शन को लगाने से उन लोगों पर कोई असर होगा या नहीं होगा।
अब जिस आदमी पर झलक ने सबसे पहले इंजेक्शन लगाई थी वो गुस्से से पागल हो उठा। उसने झलक के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसके पेट पर जोरों से एक लात मार दी, जो इतनी जोरदार थी कि झलक कुछ कदम पीछे हट गई। वो पीछे खड़े बैरियर से टकराई और जमीन पर जोर से गिरी। सभी झलक की ओर गुस्से से देखने लगे, लेकिन उसका चेहरा इस वक्त काफी हद तक दर्द में भर गया था, क्योंकि उस आदमी ने बड़ी जोरों से उसे लात मारी थी।